الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة زخرف کی آیت نمبر 26 سے 56 تک دیکھتے ہیں. آج کے لیسن میں کچھ بہت اہم آیات ہیں پہلے رکوع کے اندر، اور اس کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. دیکھیے، شرک کی مذمت ہے اس صورت میں، اور یہاں پر ایک وہ شرک تھا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ ستاروں کی پوجا اور سورج چاند کو پوجنا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی پوجا. ہر قسم کے شرک سے برات ہے، ہر قسم کے شرک کی نفی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نفی کی اس چیز کی، اور آگے موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات آئے گی. تو شروع کرتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 26 سے 56 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو. اس جب آ جاتا ہے تو یعنی کوئی پرانی بات کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب یہ ہوا تھا. کیا؟ کہ جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کس سے؟ اپنے والد سے. وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے. کیا کہا تھا؟ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یعنی آیا اِنِّي بَرِيءٌ، یہ بھی آتا ہے لیکن یہاں پر اس جگہ پہ سورہ زخرف میں براءٌ آیا ہے جو کہ مصدر ہے، اور مصدر صفت کے طور پہ آیا ہے. یعنی جب مصدر صفت کے طور پہ آتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ہم کہیں فلاں جو ہے سچا ہے، یا ہم کہیں فلاں تو سراپا سچ ہے، وہ ہے ہی سچ. ٹھیک ہے، تو دونوں میں فرق ہے. جب ہم نے کہا فلاں سچا ہے تو ٹھیک ہے کہ اس کی خوبی ہے، لیکن جب ہم نے کہا وہ سچ ہے، سراپا سچ ہے، تو اس میں زیادہ تاکید ہے. ٹھیک ہے، بہت مبالغہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ایگزیجوریشن. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی یہ کہا کہ میں تو برا ہوں، مصدر کے طور پہ آیا ہے کہ میں تو بالکل بری ذمہ، میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں، I've got nothing to do with this، کہ جس کی تم عبادت کرتے، دور دور کا میرا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ مانا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ کو ان کے شرک پر مذمت کی اور ان کو توحید کی طرف بلایا، تو توحید کے جو علم بردار تھے، توحید کے جو سب سے بڑے، توحید کی طرف بلانے والے، جن کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ہم ان کے دین پہ ہیں، ان کے طریقے پہ ہیں، ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، بڑا مانتے تھے، تو یہاں بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام تو یہ نہیں کہتے تھے جو تم کہتے ہو. ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے پجاری نہیں تھے، وہ تو شرک سے بالکل بیزار تھے، انہوں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. تمہیں اس پہ تو فخر ہے کہ وہ تمہارے بڑے تھے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے اور تم کیا کہہ رہے ہو. اگر تم ان کے راستے کے اوپر ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں اس شرک کے ساتھ،
मैं तो इसकी मुजम्मत करता हूं, मैं इससे बरी उजिम्मा हूं। उन्हीं को तुम अपना बड़ा मानते हो ना, तो फिर उनके रास्ते पे चलो। दूसरे ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो, तुम कहते ना हम तो अपने आबाओ अजदाद के दीन पे चलेंगे, तो अब तुम तो अपने आबा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ा मानते हो, तो फिर इब्राहिम के रास्ते पे चलो। और दूसरे ये एक और बात भी, ये इनके जिक्र के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ पे लाने का एक मकसद ये भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बाप की और अपने बड़ों की दीन की पैरवी नहीं की थी और हक का साथ दिया था, तौहीद पे रहे थे। तो तुम भी उनके रास्ते पे हो ना, अगर अगर तुम ये समझते हो कि तुम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे भी हो, तो तुम भी अपने जो आबा हैं उनके रास्ते पे ना चलो और उनसे अलग हक का रास्ता जो है उसको इख्तियार करो। तो लिहाजा देखो तो सही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद वाले थे, तो तुम भी तौहीद के रास्ते पे आओ। अब इसको एक और एंगल से भी आज हम देखते हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को भी, अपने बाप को भी ऐसे कहा था और बहुत स्ट्रोंगली कहा। मैंने आपको बताया ना, बरा वला के उलट है, यानी कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक डिफरेंट एंगल से आज इसको हम ऐसे देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाजे कर दिया अपनी कौम के ऊपर कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस चीज से जो तुम कर रहे हो। हालांकि एक ही जगह पर रहते थे, एक ही मुल्क में रहते थे, हिजरत तो उन्होंने बाद में की थी, जब उनको आग में डाला गया उसके बाद हिजरत की थी। लेकिन जब तक वो अपनी कौम में रहे, उन्होंने वाजे किया, क्लियरली उनको कहा कि मैं इस पे नहीं हूं। ये भी एक तरह की हिजरत होती है जिसमें साइकोलॉजिकली इंसान दूसरे से ला ताल्लुक ही इख्तियार करता है, हालांकि एक ही जगह पे रहता है। ये बताना इसलिए आपको जरूरी है कि बाज दफा हम ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसे मुल्क में रहते हैं या ऐसे खानदान में होते हैं जिनके तौर तरीके, आदतें, लाइफस्टाइल या बाज औकात मजहब भी हमसे डिफरेंट होता है। अब हम फिजिकली भी हिजरत नहीं कर सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है या हमारी कोई मजबूरियां हैं, हम वहां से नहीं जा सकते या उनसे नहीं निकल सकते। ऐसे वक्त में भी ये जरूरी है कि इंसान साइकोलॉजिकली उनसे सेपरेशन इख्तियार करे कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इन सारी चीजों से जो आप करते हैं, वो चाहे आपकी कौम है, खानदान है या माशरा है, वो मुल्क है, जो भी है। ये नहीं है कि अगर हम उनके अंदर रहते हैं तो अब ये जरूरी है कि चलो तुम उधर को हवा हो, जिधर की जो सारे कर रहे हैं हम भी वही करते जाए, या नहीं भी कर रहे तो उनको एंडोर्स करें कि चलो कोई बात नहीं, तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक है, यानी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे इससे कि तुम ये सब गलत कर रहे हो। जरूरी है कि इंसान इस बरात का दिल से भी कायल हो कि मैं, मेरा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, और जुबान से भी इजहार करे। जहां पर भी उसके लिए मौका है वो कहे कि मैं, ये गलत है और मैं इस चीज के साथ नहीं, अल्लाह इसकी कोई ऐसी प्रोसिक्यूशन का खौफ है कि भाई कोई टॉर्चर हो जाएगा या कुछ ऐसी बात हो जाएगी, जुबान से नहीं बोल सकते तो तब तब दिल से बुरा जाने, लेकिन अदरवाइज खामोश रहना नहीं है, उसका इजहार करना है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, जैसे नबी अलैहिस्सलाम करते रहे और सारे पैगंबरों की यही सुन्नत रही है। वो ये नहीं देखते थे कि इसके बाद लोगों में हमारी पजीराई कितनी होगी। आप मुझे बताएं, जब एक शख्स वाहिद थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसलिए उनको पूरी उम्मत कहा गया, अकेले थे, जब वो खड़े हुए हैं अपनी कौम के अंदर और उन्होंने ये ऐलान कर दिया। आपका क्या मतलब है ऐसा ऐलान करना? क्या चीज लेकर आएगा बताइए, क्या लाएगा? उनको हार पहनाए जाएंगे, उनको शाबाश दी जाएगी, उनको को तरक्कियां मिलेंगी, या उनके ऊपर एक मुसाइब का पहाड़ टूटेगा, मुखालफतें होंगी, हर तरफ से उनके ऊपर जुल्म ढाया जाएगा। देखिए, ये चीज को समझना है हमें कि हम हर वो काम नहीं कर सकते या हर वो बात नहीं कर सकते जिसके ऊपर हमें लोगों से तारीफें मिले, लोगों की हाँ में हाँ मिलाना, उनके साथ चलना, क्योंकि वो नॉर्म ऑफ द टाइम है, आजकल यही चल रहा है। इसी कोशिश में लगे रहना कि हम सब वही करें जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, बस उसी तरफ को हम चलें जो सब कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट चलना वो हमारे ये मुश्किल इसलिए होता है कि फिर लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे अजनबी समझेंगे या लोग मेरी मुखालफत करेंगे, मुझे बुरा कहेंगे, सब मेरी बातें करेंगे, लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। इस डर से इंसान हक बात कहने से बाज रहता है और उन्हीं तरीकों पर चलता है जो लोगों के तरीके हैं, और यही आज हो रहा है। जबकि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देखें, जिनको हम भी अपना बड़ा मानते हैं और हर मजहब वाले मानते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फिजिकली भी हिजरत की थी और उससे पहले अपने आप को इनसे अलग किया था कि मैं इसमें मुलव्विस नहीं हूं, ये भी एक लाताल्लुक ही है और ये जरूरी है कि इंसान ये कहे जब भी किसी के गलत तरीकों को देखे, कम अज कम अपने दिल में तो कहें कि या अल्लाह मैं इस चीज से राजी नहीं, मैं इससे बरी जिम्मा हूं, मैं इनके साथ नहीं हूं, चाहे वो हमारे अपने प्यारे ही क्यों ना हो। बाज दफा हम अपनी औलाद में या अपने रिश्तेदारों में ऐसी चीजें देखते हैं, हम उनसे अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि वो कर रहे होते इसलिए हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बाज दफा देखा गया है कि किसी के अगर बच्चा किसी गैर मुस्लिम से शादी कर रहा है तो वो भी शादी में जाके खड़े हो जाते हैं, क्या करें हमारे बच्चे हैं ना, तो क्या करें, हम इनको छोड़ तो नहीं सकते। नहीं, जरूरी है कि इजहारे ला ताल्लुक की इख्तियार किया जाए, जरूरी है कि ये कहा जाए कि ये गलत है और मैं इससे बरी उसे हूं, या इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। बाज दफा ऐसे होता है कि किसी का शौहर हराम कमाई करके ला रहा, अब उस औरत के लिए लाजिम है कि वो ये कहे कि ये गलत है, ये नाजायज है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ए अल्लाह मुझे मेरी इस पे पकड़ ना करना और कभी भी इस पे राजी खुश ना हो जाए। इसी तरह बाज दफा खानदानों में ऐसे, जाहिर है आपको हमेशा मुआफिक लोग थोड़ी मिलते हैं, खानदानों में ऐसे लोग भी होते जो दीन से दूर, दीन की बातों से चिढ़ने वाले, उन्होंने अलग ही रास्ते अख्तियार किए होते हैं, अब हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो खानदान वाले होते हैं। उस वक्त भी जो हरकतें वो कर रहे होते उसके ऊपर आराम से बैठ नहीं जाना कि कोई बात नहीं आप क्या करें, अब हमारे खानदान वाले कर रहे हैं तो इसलिए ठीक हो गया, या उनकी सफाइयां पेश करें, या उनको कुछ भी ना कहें, बल्कि जिस हद तक हो सके मुमकिन उस हद तक अपने तौर पे जरूर कहें ताकि हम खुद बरी उज़िम्मा हो जाएं। क्योंकि देखते हैं हमेशा हमें हमारे मुआफिक लोग नहीं मिलेंगे, मुआफिक मुआशरा नहीं मिलेगा, हर वक्त ये शिकायत करते रहना बस ये हमें ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसे हम बरी उज़िम्मा नहीं हो जाते, और फिर वो खुद भी करना शुरू कर दे, या खुद नहीं भी कर रहे तो दिल में उसको बुरा ही ना जाने, ये इजहार ही ना करें कि ये आप लोग गलत कर रहे हो, क्योंकि हम हर जगह अच्छे बनना चाहते हैं, हर जगह हम अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं। बस मेरी कोई बात से कहीं कोई मुझके ऊपर, मेरे ऊपर ना कोई तान आए, मेरे ऊपर ना कोई बुराई आए, लिहाजा हम कोई ऐसी बात ही नहीं करते जो कहीं दूसरे को नाजायज लगे, कोई गलत लगे, कोई दूसरे को बुरी लगे। लेकिन जहां पे हक आ जाता है वहां पे हक कहना जरूरी है, वहां पे बोलना जरूरी है। तो बाज दफा हमारे बहुत करीबी भी वो हो सकते हैं, तो उनकी भी तारीफें ना करें। उनके भी खास तौर पे औलाद जब होती है, उनकी भी जस्टिफिकेशंस ना दे, बल्कि उनको भी कह दे और लोगों को भी कह दे, नहीं नहीं मैं इसमें इस चीज में साथ नहीं हूं। तो ये बात, ये जो यहां कही गई कि मैं बरी हूं इससे जिसकी तुम इबादत करते हो, अरे उन्होंने कह दिया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, जो हम सूरह काफिरून में पढ़ते हैं ना, लना आमालू ना वलकुम आमाल को, हमारे लिए हमारे आमाल, तुम्हारे लिए हमारे, लकुम दीनुकुम वलिया दीन सूरह काफिरून में आता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ये नहीं कि हम सब एक ही हैं, सब अच्छा है, कोई बात नहीं, वो भी सही कर रहे हैं, नहीं। मुसलमान और तौहीद वाला ये गवारा नहीं कर सकता, ये अल्लाह की हदें टूट रही हैं, शेर खो रहा है, ये मैरिजेस हो रही हैं, और वो कहे कि नहीं कोई बात नहीं है, ये भी एक नॉर्मल चीज ही है, कोई बात नहीं, जैसे दूसरी शादियां होती हैं तो इनकी भी हो सकती। लोग इतनी हराम काम कर रहे हो और इंसान ये सोचता रहे सब ठीक ही है, ये भी सही है, वो हम भी सही हैं। बाज लोग तो ये कह देते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी तो आखिर ये खुदा तक को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा एक को तो सारे ही मानते हैं ना, तो हम भी एक को मानते हैं, तो कोई यानी फर्क ही नहीं रहा। नहीं, जो शिर्क है उसको कभी भी एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, गवारा नहीं कर सकता। तो अपनी जुबान से और अपने अमल से बरात का इजहार किया जाए, जहां पे अमल नहीं हो सकता कम से कम जुबान से बोला जाए, सब चीज को ये ना कह दिया जाए सब अच्छा है सब ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ अपने बाप से नहीं कहा, अपनी कौम से भी कहा। उन्होंने ये नहीं कहा क्या करूं, बाप की रजा भी तो चाहिए ना, बाप की रजा में ही तो अल्लाह की रजा है, तो लिहाजा बाप को कैसे नाराज कर सकता हूं। नहीं, अगर वो शिर्क कर रहा है तो उसको भी कहना जरूरी है, हालांकि बाप का एक मकाम है, एक मर्तबा है, और एक बेटे के लिए कहना कितना मुश्किल है। उसको पता है कि अगर मैं ये कहूंगा तो ये मैं बाप की गुड बुक्स में नहीं रहूंगा, बाप मुझे अच्छा नहीं समझेगा, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाज नहीं आए ये बात कहने से कि ये गलत है। अब हमारी दो एक्सट्रीम्स हो जाती, या तो हम बदतमीजी पे उतर आते हैं, लोगों को ताने दे रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और चिल्लाना शुरू कर दिया, ये क्या हो रहा है वो क्या, ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरी है कि अच्छे बन के रहना सारे के साथ, बस ये नहीं जी आप भी ठीक है कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही एक्सट्रीम लोगों की बातें हैं, आप भी सही हैं, दोनों ही गलत ना। तो ऐसा रवैया इख्तियार किया, देखिए पैगंबरों ने, उन्होंने किसी जगह पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बदतमीजी कर रहे हैं अपने बाप से, या अबती कह के ही बात की है मेरे अब्बा जान, दूसरी जगहों में इसकी डिटेल आती है, यहाँ पे मुख्तसर है। कहीं भी उनके एहतराम उनकी इज्जत में कमी नहीं लेकर आए। और दूसरी तरफ कहीं ये भी नहीं है कि वो कहते हैं अच्छा चले अब क्या किया जाए, बाप है ना तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि अब हम तो दीन सीख रहे हैं, हमारे माँ बाप वो उन्हीं तरीकों के ऊपर, वो ही बिदतें, वो ही शिर्क, वो ही सब चीजें कर रहे हैं, तो हम क्या करें। तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात, उन्होंने कैसे किया था डील। इसी तरह कोई भी प्यारा रिश्ता, जैसे बाप का रिश्ता प्यारा, इस तरह और बहुत से प्यारे रिश्ते होते। खैर ख्वाही के साथ बात करनी और इज्जत और एहतराम को नहीं जाने देना। इवन जब अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तब भी ये नहीं कि तांस ताने ऐसी बातें करना कि जो दूसरे को जिच करके रख दे, या ऐसे रवैये अख्तियार करना, वो नहीं। एक तमीज के दायरे में रहते हुए लॉजिक से बात की जाए, क्योंकि बाज दफा हम इस तरह के रवैयों से ही लोगों को भगा देते हैं और हमारी बात पीछे रह जाती है, हमारे जो बदतमीजी होती है उसकी वजह से लोग पुट ऑफ हो जाते हैं, वो भाग ही जाते हैं, वो बात सुनेंगे क्या जिस वक्त रवैया ऐसा होगा। तो एक तो ये कि अल्लाह की हदें टूट रही हूं, तो हम ये ना कह के बैठ जाएंगे वो तो क्या हो गया, मैं तो सबको ही खुश रखती हूँ, अल्लाह का दीन तो चाहे टूटे चाहे जो जो मर्जी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, लोगों के सामने बस मेरा अच्छा फेस रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ सबसे लड़ते बढ़ते फिर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये हिकमतें हमें पता चलती हैं, अंबिया ने कैसे बात की, ये उन्होंने अपने बाप से भी और अपनी पूरी कौम से कह दिया। इतनी बड़ी बात है अपनी पूरी कौम से ये बात कह देना, यानी सबको ही अपनी मुखालफत पे खड़ा कर दिया, छुपा के नहीं रखा इस बात को, कि ये नहीं किया कि मुझे क्या आप कौम जो मर्जी करे, या मुझे फिर ये क्या समझेंगे या क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मैं कैसे इनके साथ बिगाड़ सकता हूं। और लोग इसमें क्या कह देते हैं, दुनिया को भी तो साथ लेके चलना है ना, इसको वो दुनिया कह देते, दीन है लेकिन ठीक है दीन है लेकिन दुनिया को भी तो साथ चलाना है ना हमने। और मतलब क्या होता है कि इनको भी तो खुश रखना है, चाहे ये कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इनके पास भी तो मुझे अच्छे बन के रहना है ना। नहीं, या तो फिर अल्लाह को खुश कर ले या उन लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं उनको खुश कर ले, एक ही हो सकता है। तो दिली तौर पे भी उनसे अलग हो, दिली तौर पे भी इस चीज को गलत माने, और जुबान से भी इस मामले में मीठे मीठे बनने की जरूरत नहीं, इस मामले में साफ उल साफ बताया जाए कि ये गलत है ये सही नहीं है। और ये जो आयत है समझ लें, सूरह काफिरून की ही तफसीर है इस आयत में। और सूरह काफिरून को हम कब पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम सुबह, देखें अभी हमने जो सुबह की पहली नमाज पढ़ी, स्टार्ट ही दिन का किया है, तो सुन्नत पढ़ते हैं ना, दो सुन्नत, उसमें पहली रकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह काफिरून पढ़ते थे, ठीक है, और सेकंड में सूरह इखलास, मुख्तसिर पढ़ते थे इन दो सुन्नतों को, इनको लंबा ना करें, सुन्नत के मुताबिक इनको इसी तरह पढ़ें, सबको आती सूरह काफिरून और सूरह इखलास भी आती। और दूसरी जो फर्ज है फजर के, वो अपने लंबे करने, वो जितने भी लंबे करें, लेकिन सुन्नतों को नहीं करना। इसी तरह जो हमारा लास्ट हमारी नमाज है दिन की, वो कौन सी है, वितर। वितर के ऊपर हम खत्म करते हैं अपने डे को, यानी अपने रात की सारी नमाजें पूरे रात की खत्म होती हैं वहां पे। तो वितरों के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसलन तीन वितर है तो सेकंड रका में सूरह काफिरून तिलावत फरमाते थे, पहली में सूरह आला फिर काफिरून फिर इखलास, तो उसमें भी काफिरून है। अब देखें सुबह भी की तो बरात के साथ इनसे, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, और मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते, जुबान से इजहार हम कर रहे हैं सुबह भी शाम भी। हम अपनी सुबह का आगाज भी इससे करते हैं और इख्तिताम भी अपने दिन की नमाजों का इससे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम कितना ये कहते हैं नहीं, ये इनके तरीके, ये इनका लाइफस्टाइल, ये इनकी बातें, ये इनका अकीदा होगा, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, कितना ये करते हैं। या हम भी जिसको देखते हैं जिस तरीके पे देखते हैं उसी बोट में बैठ जाते, वही तरीके अपना लेते हैं, क्योंकि मुझे ये भी अच्छा लग रहा है और उन लोगों का वो चीज अच्छी लग रही है, इनकी होली अच्छी लग रही है, उनकी क्रिसमस अच्छी लग रही है, उनका वैलेंटाइन अच्छा लग रहा है, सब चीजें ले लूंगी, इनका पहनना ऐसा अच्छा लग रहा है, उनका ओढ़ना अच्छा लग रहा है, ये वाला इनकी जो वो हराम चीजें खा रहे हैं वो वाली मुझे पसंद आ रही है, इनके तौर तरीके मुझे अच्छे लग रहे हैं, हालांकि वो सब अल्लाह के हाँ गुनाह के काम है, नाफरमानी के काम है, लेकिन वो सब मुझे पसंद आ रहे हैं, लिहाजा मैं सबको ले रही हूं और फिर कह रही हूं मुंह से लकुम दीनुकुम वलियदीन, ये कैसे हो सकता है? तो इस बात को समझिए कि ये मामूली बात नहीं है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हम सीख रहे हैं ना, ये कहना बहुत बड़ी बात है, और आज भी हमें इसी चीज की जरूरत है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे जिससे तुम इबादत करते हो, जो तुम तरीके रखते हो, जो तुम काम कर रहे हो। अगर आज लोग अपना जेंडर बदल रहे हैं, मर्द औरतें बन रहे हैं, औरतें मर्द बन रही हैं, या ऐसे हराम काम जो कौमे लूत ने किए थे वो किए जा रहे हैं, या ऐसी रसूमात की जा रही हैं जो शिरकियां हैं, या कोई बिदात के अंदर है, या और जितने भी आप देख रहे हैं आजकल काम हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, हमें जिनका पता है कि अल्लाह ताला ने इस चीज से मना फरमाया, हम क्यों नहीं फिर कहते, कम से कम अपने आप के अंदर ही कह दें कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, या अल्लाह मेरी इस पे पकड़ ना करना, या बस ठीक है कोई बात नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता हम भी उसी तरह डगर पे जाते हैं जो वो कर रहे हैं, तो ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं, चाहे सारा माशरा कर रहा हो, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम इसमें थी, हमारे यहां तो सब नहीं ऐसा कर रहे होते, तब भी हम उन लोगों को देखते हैं जो बुराइयों के अंदर हैं और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अकेले खड़े हो गए थे, पूरी कौम दूसरी तरफ थी, हत्ता के बाप तक भी, अपने घर तक में भी, और हम क्या कह देते हैं क्या करें हमारे तो घर में ही मुखालफत है, क्या करें तो हस्बैंड नहीं मानते, क्या करें तो वो नहीं मानता, फलां नहीं मानता, जब सबको मना के ही दीन पे चलना है तो फिर तो कभी दीन पे नहीं चल सकते, क्योंकि सब तो कभी नहीं मानेंगे, सबको कभी नहीं आप राजी कर सकते, इसके लिए एक अल्लाह को राजी करना अपना मिशन बनाए, तभी सुरखुरु हो सकते हैं कयामत के दिन, वरना अगर आप हर एक का चेहरा देखने लगे ये भी खुश हो जाए, दोस्तें भी मेरी खुश रहे, सारी दुनिया भी खुश हो जाए, खानदान भी सारे के सारे खुश हो जाए, तो ये नहीं हो सकेगा, इसमें जरूर आप कहीं ना कहीं अल्लाह ताला को नाराज कर लेंगे, तो लिहाजा हमने ये नहीं देखना कि कौन कौन खुश होता है, या कौन कितने लोग मेरे साथ हैं, या कितने लोग भी ये काम करते हैं, क्योंकि वहां पे कितने लोग कर रहे थे ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, कितने लोग थे जो उनके साथ खड़े हुए थे, कोई भी नहीं, चाहे कोई तन्हा रह जाए और पूरी कौम दूसरी तरफ हो, तब भी उनके दीन को नहीं अपना लेना, उनके तरीकों के अंदर नहीं रच बस जाना, हम तो हिंदुओं के साथ रहे तो उनके तरीके अपना लेते हैं, क्रिश्चियन के साथ रहे तो उनके तरीके अपना लिए, हर एक का तरीका, जैसे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल दीन अता फरमाया, उसमें खुशी के, गमी के, उठने बैठने के, चलने फिरने के, पहनने ओढ़ने के, कमाइयां करने के, खाने पीने के, हर किस्म के अहकामात हमें दे दिए, अब उनके लिए उनका दीन, हमारे लिए हमारा दीन, दीन इज वे ऑफ लाइफ, तो हमने उनके दीन को नहीं अपना लेना, हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास वो दीन है जो अल्लाह की तरफ से आया और वो मुकम्मल है और वो प्रिजर्व्ड है, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया, अब इसके अंदर इस अल्लाह के कलाम में कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती, हमें इसके ऊपर तो प्राउड होना चाहिए, और हमारा हाल क्या है, हम इसी को छोड़ छोड़ के भागते हैं और लोगों के तरीकों पर रीझते हैं और उनके वे ऑफ लाइफ हमें अच्छे लगते हैं, उनकी हर गिरी पड़ी चीज हमें पसंद आ जाती है, वो बुतों के सामने झुकने लगते हैं तो हम भी कब्रों के आगे जाके झुकना शुरू हो जाते हैं। वो कोई तरीका करते हैं तो हम भी वही चीज उसी तरीके को अपना लेते। तो ये नहीं, इससे बरात का इजहार जरूरी है। ये इजहार अपनी इंसान औलाद के आगे भी करे, आगे यही बात आ रही है। आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आगे देखें, इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन, सिवाय उसके मैं सबसे बरी उज़िमा हूँ, सबसे कह दिया सबसे, जिनकी भी तुम इबादत करते हो, सिर्फ एक से बरी उज़िमा नहीं हो जिसने मुझे पैदा किया, वो है अल्लाह। और अनकरीब वो मुझे हिदायत देगा, अनकरीब वो मुझे रास्ता दिखाएगा। इसका मतलब है कि जो पैदा करने वाला है उसी से रहनुमाई भी मिलेगी, वो ही रहनुमाई भी करता है, वो ही हिदायत भी देता है, वो ही दिखाता है राह, वो ही बताएगा किस रास्ते पे चलना है। मैं उससे रहनुमाई लूंगा, उससे गाइडेंस लूंगा। अगर एक इंसान दुनिया जहान से गाइडेंस ले रहा है लेकिन अल्लाह रसूल की बात से गाइडेंस नहीं ले रहा, तो गुमराह हो जाएगा। चाहे उसने कितने ही पीरों फकीरों को बनाया हुआ, किसको बनाया, नहीं, जो अल्लाह की बात है, अल्लाह मुझे गाइड करेगा, और उसकी गाइडेंस ये कुरान है और हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बात ही हम तक पहुंचाई, तो वो गाइडेंस ले रहे हैं तो अल्लाह से, क्योंकि उसी का हक है कि वो मुझे बताए कि मैंने आप किस रास्ते पे चलना है, क्योंकि मुझे पैदा करने वाला वो है ना। तो जब कोई और मुझे पैदा करने वाला नहीं तो मैं उनके पास क्यों हिदायत के लिए जाऊं। और यही बात मूसा अलैहि सलाम ने भी फरमाई थी, इन्नमा या रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ मेरा रब है वो मुझे हिदायत देगा। तो ये जो बात है इन्ननी बरा मिम्मा ताबुदून, ये ला इलाहा है, और इल्लल्लज़ी फतरनी ये इल्लल्लाह है, तो यहां पे कलमा हो गया। ला इलाहा पहला हिस्सा, इल्लल्लाह दूसरा हिस्सा, क्योंकि अल्लाह ही है ना जिसने पैदा किया। और पहली बात मैं बरी हूं, ला इलाहा ये बात ला इलाहा है, इन्ननी बरा मिम्मा ताबुदून, इसको आप तफसीर कर सकते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह आगे, ला इलाहा है आगे, इल्लल्लाह है। वजअलहा कलिमतन बाकियतन फी अकबी लअल्लहुम यरजिउन, और वो ये बात अपनी औलाद में भी छोड़ के गए, यानी वो सिर्फ खुद ही नहीं ये काम किया बल्कि उन्होंने अपनी औलाद की भी फिक्र की। सूरह वकरा में आता है ना कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी और याकूब अलैहि सलाम ने भी अपनी औलाद को वसीयत की, वसा बिहा इब्राहिम बनी ही व याकूब, दोनों ने वसीयत की क्या अपनी औलाद को किस किसी और की इबादत ना करना, तो मुस्लिम ही इस्लाम की हालत में ही तुम्हें मौत आए। ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये कलिमतुन बाकिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम ये है, क्योंकि ये दीन है इस्लाम, उस वक्त भी यही दीन था जो सब पैगंबरों का दीन था। तो वो अपनी औलाद को भी यानी ये वसीयत करके जाते हैं, ये बताया जा रहा है। इब्राहिम अलैह सलाम का तरीका बाद वालों के लिए भी नमूना है, ये दूसरी तफसीर है। यानी एक तफसीर क्या है कि खुद भी इस पे अमल किया और औलाद को भी इसकी वसीयत की, दूसरी तफसीर क्या है अपने बाद वालों के लिए उन्होंने ये नमूना छोड़ा, एग्जाम्पल छोड़ी, ये कलिमतम बाकियतन छोड़ा, हमने बना दिया उसको इस चीज को कि कलिमतम बाकिया क्या मतलब है, बाकी रहने वाली बात, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह फी अकबिही उनके पीछे वालों के लिए नमूना। तो यानी उन्होंने फिक्र की अपनी औलाद की और अपनी अगली नस्लों की, और मरते दम भी उन्होंने अपनी औलाद को इसी चीज की ताकीद की। तो देखें जो भी मोमिन होता है उसके लिए जरूरी है ये, ना सिर्फ अपनी औलाद बल्कि अपनी जुर्रियत के लिए, अपनी सारी नस्ल, जुर्रियत क्या होती है जो नस्ल आगे, उस सब के लिए फिक्र करें। रब्बी औज़ेनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, वल में उस दुआ में, ये कुरानी दुआ है, उसमें आता है ना एक हिस्सा, असलह ली फी जुर्रियती, ए अल्लाह मेरी जुर्रियत की इसलाह कर देना। सिर्फ इतने हिस्से को नमाजों के सजदों में भी मांगे, इतनी तो बात मांग मांग सकते ना, असली लीफी जरूरी है, इनकी इसलाह कर देना, बहुत जरूरी है। इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि इंसान अपनी औलाद और नस्लों के ईमान की फिक्र करे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। और इसके लिए सिर्फ परेशानी काफी नहीं है, बल्कि उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करना जरूरी है। अपने एक्शन से भी कोशिश करें कि यही उनको तालीम भी दे, उनके ईमान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश भी करें, खुद भी बेहतरीन नमूना बने उनके लिए, खुद भी अमल करके दिखाएं, खुद भी तौहीद पे कारबंद रहें, खुद भी दीने इस्लाम को अपनी जिंदगी में लाएं, अप्लाई करें। इस तरह से हम एक नमूना बनेंगे, एक एग्जाम्पल बनेंगे जो हम छोड़ के जाएंगे अपनी औलाद के लिए। और दूसरी क्या बात कि उनके लिए, तीसरी बात कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें, सजदों में जा जा के दुआएं करें, और सिर्फ औलाद के लिए नहीं, पूरी जुर्रियत के लिए, यानी कयामत तक की अपनी नस्लों के लिए। वसले ली फी जुर्रियत लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आए, शायद कि वो तौबा कर लें, शायद कि वो नसीहत पकड़ लें, यानी इस तरफ को आ जाएं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के का दीन है, उस तरफ आ जाएं। यानी मुशरिकीन मक्का के लिए भी कहा जा रहा है कि शायद वो, उनके ये बात बताई जाए, शायद कि वो समझ जाएं इस बात से। उन्होंने नसीहत की थी तो शायद लोग अल्लाह की बात की तरफ, उनकी बात की वजह से आ जाएं। बल मत्ता उलाई, बल्कि मता दी, मता क्या होता है, थोड़ा फायदा, फायदा तो है लेकिन शॉर्ट, थोड़ा, थोड़ी देर का। हा उलाई व अबाहुम, इन लोगों को, इनको किनको, जो मुशरिकीन मक्का थे, कुरैश थे, और इनके आबाओ अजदाद को, हत्ता जाअहुमुल हक व रसूल मुबीन, यहां तक कि आ गया उनके पास हक, हक यानी क्या, ये कुरान और एक रसूल जो खोल के बयान कर दे होने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि ये कुरैश मक्का बेशक ये शिर्क कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दी, इतनी मोहलत दी इनकी पकड़ने की, और इनको नेमतें दी, मता दिया, दुनिया का फायदा दिया। अब देख लें आप कि इनको अल्लाह ताला ने अपने घर का मुजाविर बनाया, अल्लाह के घर की खिदमत करने वाला बनाया, इनको रिज़्क़ की फरावानी दी, इनको अमनो आमान अता फरमाया, इनको सारे अरब में इज्जत अता फरमाई। तो आप देखें सूरह कुरैश में आता है ना, इनके काफले कहाँ कहाँ जाते, लीला फी कुरैश, लीला फी हिमरिल्ला तशीता इबसई। तो जब किसी के पास भी नहीं खाना होता था तो इनके पास फरावानी होती थी, जब लोगों के काफले लुट जाते थे, उनके ऊपर हमले होते थे, उनके लिए रास्ते अमन वाले नहीं थे लेकिन इनके लिए अमन वाले थे, तिजारतों के लिए जाते थे, लोग आके यहाँ पे तिजारतें करते थे, यानी यहाँ पे एक बड़ा समझ ले एक फाइनेंशियल हब था, क्योंकि लोग हज के लिए आते थे, उस जमाने में भी हज होता था, यहाँ पे मंडियां लगती थी, यहाँ पे बाजार लगते थे, इनकी इकोनॉमी कितनी फ्लरिश कर रही थी बावजूद इसके कि ये लोग शिर्क करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने फिर भी इनको पकड़ा नहीं, इनको मता दी, इनको भी, इनके आबाओ अजदाद को भी। ये उन नेमतों का जिक्र यहाँ पे हो रहा है जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर की हुई थी, हत्ता कि इनके पास हक आ गया। अब तो हक आ गया, अब तो कुरान आ गया, वही आ गई, अब तो एक रसूल आ गया जो बात को बयान करने वाला है, अब तो ये सीधे रास्ते पर आ जाए। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना तरीका छोड़ा था, अपना नमूना छोड़ा था, अपनी एग्जाम्पल छोड़ी थी, अपने पैगाम को छोड़ा था, अपनी वसीयत की भी थी, इन्होंने उसको छोड़ के शिर्क अपनाया, फिर भी अल्लाह ताला ने इनको अता किया, बहुत नेमतें अता की। लेकिन जब रसूल आ गया तो हुज्जत तमाम हो गई, उज्जत तमाम हो गई, अब हक आ गया, कुरान भी आ गया, रसूल वो जो रसूल मुबीन है, इसने वाजे तौर पे बता दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो चीज भी तुम्हें जन्नत के करीब करने वाली है मैंने तुम्हें बता दी है, और जो जहन्नुम के करीब करने वाली है मैंने वो भी तुम्हें बता दी है, कोई बात रह नहीं गई, सब चीजें क्लियर करके बता दी। तो इनकी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह ताला इनको अता करता रहा और बहुत कुछ दिया, लेकिन जब याद रखें किसी को अल्लाह ताला उसकी नाफरमानियों के बावजूद भी दे रहा हो वो शिर्क कर रहा है फिर भी उसको बहुत नेमतें मिल रही हैं, तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला ने इसको ढील दी भी है, जिसको कैसे कहते हैं इस्तदराज, अलिफ सीन ता दाल रौ अलिफ जीम, इस्तदराज का मतलब होता है ढील देने के बाद फौरन पकड़ लेना, अचानक से पकड़ लेना, जैसे आप समझ लें कि कांटा डाला हुआ है ना आपने, तो मछली को कांटे में फंस गई है, अब वो तैर रही है, समझ रही मैं आजाद हूं, लेकिन शिकारी किसी वक्त भी उसको खींच लेगा, और वो क्योंकि कांटा फंसा हुआ उसकी रीच में, जो नाफरमानी कर रहे हैं और उस पे भी उनको नेमतें मिल रही हैं, तो ये ज्यादा देर की बात नहीं होती, अल्लाह ताला ने बस ढील दी भी है समझे इनको, फिर अल्लाह ताला एक दिन ऐसा पकड़ता है कि उनको अचानक एक पकड़ आती है कि उनको होश भी नहीं आता, फिर तो उससे डरना चाहिए, इस चीज से मुतासिर नहीं होना चाहिए कि कोई नाफरमानी कर रहा है और उसको बहुत नेमतें मिल रही हैं तो चलो हम भी ऐसे ही करें, नहीं, अल्लाह ने उसको डील दी भी, और अल्लाह ताला पैगंबर भेज के ये कुरान भेज के अल्लाह ताला हुज्जत तमाम कर देता है, जब पैगाम आ गया ना किसी के पास और आखिरी नबी आ गए तो सबके लिए हुज्जत तमाम हो गई, कयामत तक आने वाले लोगों के लिए अब कोई बहाना नहीं रह गया कि हमें पता नहीं था हम क्या करते, हमारे पास भी कोई नबी आता तो हमें पता चलता, नबी आखिर जमा आ चुके और ये पैगाम महफूज तौर पे आप तक पहुंच चुका, अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती किसी के ये कहने की हमें पता नहीं था, तुमने खुद आंखें बंद की, और अल्लाह ताला ने तो ये पैगाम भेज दिया था और तुम्हारे लिए हर जरिया अल्लाह ताला ने बना दिया कि इस पैगाम से रहनुमाई ले सको, वलम्मा जाअहुमुल हक, जब आ गया उनके पास हक यानी कि कुरान, कालू हाजा सेहरून, उन्होंने कहा ये तो जादू जादू है, वह इन्ना भी काफिरून, और हम तो साफ, उन्होंने साफुल साफ कह दिया हम तो इसका इनकार करने वाले हैं। देखें एक तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं इसका इनकार करता हूं मैं इसे बरी हूं, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये कुरान तो जादू है हम इसका इनकार करते हैं, जादू क्यों कहा, इसलिए कि कुरान दिलों पे असर करता था, दिलों को बदल देता था, लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी, वो कहते हैं ये तो जादू हो गया इनके ऊपर, इसको तो जो सुनता है वो उसके ऊपर असर हो जाता है, तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया ये कह के। देखें अगर काफिर अपने कुफर के ऊपर इतना पक्का हो सकता है कि वो ये कह दे कि मैं तो इसका इनकार करता हूं, तो एक मोमिन क्यों नहीं हो सकता जो कह दे कि मैं हर बातिल का इनकार करता हूं, हर हराम का इनकार करता हूं, ईमान तो जुर्रत देता है, लेकिन जब मुसलमान ही सब में अच्छा बनने के लिए, कूल बनने के लिए, सब में एडजस्ट होने के लिए और सब में तारीफें चाहने के लिए और इन रहने के लिए अपना दीन ईमान ही गिव अप करते, तो उसके पास क्या रह गया, तो काफिर कुफर में इतना पक्का हो सकता है तो मोमिन को अपने ईमान में इससे ज्यादा पक्का होना चाहिए कि वो इनकार करे और जुर्रत के साथ करे कि मैं नहीं मानता इन चीजों को। वकालू लौला नुज़िला हादल कुरान वला रजुल मिनल करियतैन अज़ीम, उन्होंने कहा क्यों नहीं नाजिल हुआ ये कुरान ऊपर किसी शख्स के, मिनल करियतैन طائف और मक्का की बस्तियों मुराद हैं, ये दो बस्तियां थी। अजीम कोई अजमत वाला, सिफत रजुल की है, ये करिया की नहीं है। करिया बस्ती अजीम हो वो नहीं, रजुल किसी अजीम आदमी के ऊपर, इन दो बस्तियों के किसी बड़े आदमी के ऊपर क्यों नहीं नाजिल हुआ? यानी अब जो अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाजिल करना है, यानी पैगंबर बनाना है, तो वो भी इनकी मर्जी से बनाया जाए जिसको ये बड़ा समझते हो। वो कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं बनाया गया, इतने बड़े बड़े सरदार बैठे रह गए, और ये दुर्रे यतीम ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मेरे पास पैगाम आता है। तो अगर अल्लाह ने कुरान नाजिल करना ही था, इससे पता चलता है कि कुरान का ये नाम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी वाजे फरमाया कि इसका नाम कुरान है। यह कुरान किसी ऐसे शख्स के ऊपर क्यों नहीं उतरा जो बड़ा आदमी हो, जो ताइफ का सरदार होता या मक्का का सरदार होता? उन्होंने क्या देखा था? पैसा, बड़ी शख्सियत होती, बड़ा नामवर होता, बहुत बड़े मर्तबे वाला होता, जिसके आगे पीछे को गुलाम हैं, जिस जिसकी बड़ी सरदारी है। वो ये समझते थे कि ये चीज है जो चुनाव के लिए जरूरी है। वो ये समझते थे कि कोई बड़ा आदमी होना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए बड़ा आदमी होना क्या था, उसका मेयार क्या था? माल या सरदारी, इखलाक और किरदार नहीं था। अखलाक और किरदार में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा मक्का जानता था कि सादिक और अमीन है, लेकिन उनके लिए ये चीज कुछ भी हैसियत नहीं रखती थी। उनके लिए बड़ाई किसमें थी? जैसे आज हमारे नजदीक है, कोई नेक है, कोई दीन वाला है, उसकी परवाह नहीं है। अब कोई बेटी का रिश्ता भी करने जाए तो वो भी ये नहीं देखता कि दीन किसी का क्या है, देखता माल कितना है, पैसा किधर है, जॉब कितनी बड़ी है, क्योंकि हमारे नजदीक भी बढ़ाई का मेयार यही रह गया। क्या अल्लाह ताला के नजदीक ये मेयार है? फर्क है ना हमारे मेयार में और अल्लाह ताला के मेयार में। वो किसको चुनता है? वो माल देख के नहीं चुनता, वो सरदारियां देख के नहीं चुनता, बल्कि हदीस में आता है अल्लाह ताला ने बनू आदम के दिलों को देखा तो उनमें बेहतरीन दिल, बेस्ट दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो अल्लाह ताला ने उनको अपना नबी चुना। और फिर अल्लाह ताला ने उनके बाद दिलों को देखा, उनके बाद सहाबा के दिलों को सबसे बेहतरीन पाया तो उनको चुना। और सहाबा भी सारे कोई बहुत ज्यादा कम ही थे जो कोई कोई ज्यादा मालदार थे, ज्यादातर तो गरीब ही थे, मुफलिस थे। तो अल्लाह ताला इसका मतलब ना माल देखता है, अल्लाह ताला को इससे परवाह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, ना ये कि आपकी कितनी शोहरत है, आपके कितने फैंस हैं, आपकी कितनी फॉलोइंग है, या आप कितने बड़े लीडर हैं, या कितनी बड़ी कुर्सी है आपके पास, या कितनी हसीन है आप, बल्कि अल्लाह ताला क्या देखता है? दिल देखता है। क्या दिल हमारे ऐसे हैं? चाहे नबुव्वत हो या दीन की खिदमत हो, उसके लिए मयार क्या है? सहाबा को अल्लाह ताला ने किस बात पे चुना था? दिल देख के, उनके भी माल नहीं देखे, उनको चुना अपनी दीन की खिदमत के लिए। तो अल्लाह ताला हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला ना तुम्हारे माल देखता है ना तुम्हारी शक्लें देखता है, वो तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिल देखता है। और वो ही हमारे पास नहीं होते। हमारा फोकस किस चीज पे होता है? ज्यादा तवज्जो किधर होती है? किसको ज्यादा संवारने और ज्यादा बढ़ाने की हमारे अंदर चाहत होती है? माल बढ़ जाए और शक्लें अच्छी हो जाए, लेकिन दिल कैसे हैं या अमल कैसे हैं, उस तरफ फोकस ही नहीं। तो अल्लाह ताला की ये तकसीम है, और उसकी तकसीम किस बेस पे होती है, ये किसका दिल कैसा है, उसको स्टेटस से हमारे कोई लेना देना नहीं। वो तो उसने खुद दिया है, पैसे से कोई लेना देना नहीं, वो भी उसने खुद अता की है। तो वो अल्लाह ताला की जो सिलेक्शन है ना, उसके ऊपर एतराज कर रहे हैं। उसके ऊपर मुतमइन नहीं है, उनके नजदीक किसी और को सेलेक्ट होना चाहिए था। आज भी हम भी ये सोचते हैं कि आगे आ रही है रिस्क की बात, माल की बात, हम ये सोचते हैं इसको इतना मिलना चाहिए था, उसको क्यों मिल गया, इतना ज्यादा क्यों उसको मिल गया, या इसको क्यों नहीं मिला, ये इसको कम क्यों मिला हुआ। हमारे हम भी तो मुतमईन नहीं होते ना अल्लाह की तकसीम पे। आगे ये बात आ रही है, अहम यकसीमून रहमत रब्बिक, क्या वो तकसीम करने करते फिरते हैं अल्लाह की रहमत को, तेरे रब की रहमत को? इनके हाथ में क्या तकसीम है, ये क्या सेलेक्ट करेंगे, ये बताएंगे अब अल्लाह ताला को कि किसको आपने सेलेक्ट करना है अपने नबी होने के लिए, ये बताएंगे? इनके इतराज का जवाब एक्चुअली दिया जा रहा है कि ये इतराज कर रहे हैं ना, उनको होना चाहिए था, इन सरदारों को नबी बनना चाहिए था, उनको छोड़ के इसको क्यों नबूवत मिल गई? तो तुम अब अल्लाह ताला को बताओगे कि किसको नबूवत मिलनी चाहिए? क्या ये रिसालत की जो तकसीम है इनके हाथ में है, या इनके मशवरे से अल्लाह ताला करे, नाउज़ुबिल्ला? अल्लाह को ज्यादा पता है या इनको? अल्लाह आलमु हैसु यजालु रिसालता, अल्लाह को पता है कि कहाँ पे उसने अपनी रिसालत भेजनी है। और यहाँ पे नबूवत को कहा गया रहमत रब्बिक, तेरे रब की रहमत। तो अल्लाह ताला को इनका मशवरा नहीं चाहिए? नहनु कसमना बैनहुम मईशत हम फिल हयात दुनिया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी की मईशत भी अल्लाह तकसीम करता है, ठीक है? यानी क्या मतलब है यहाँ पे, यानी दुनिया की जो चीजें हैं, माल दौलत नेमतें, ये तो मता है इस दुनिया का, ये तो हकीर चीजें हैं इस दुनिया की, इनकी तकसीम भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, किसी के कहने पे नहीं कि किसको कितने पैसे देने हैं, किसको कितना मालदार करना है, किसके पास कितना होना चाहिए, ये तकसीम जब अल्लाह ने अपने पास रखी इस हकीर दुनिया की तकसीम, तो नबूवत जो इतनी आला चीज है उसकी तकसीम क्या इनके हाथों में होनी चाहिए? बात समझ आ रही है? यानी ये दुनिया का रिस्क भी अल्लाह ताला ने इनके हाथ में नहीं रखा, जो कि छोटी चीज है, मामूली चीज है, तो नबुव्वत का काम इनके हाथ में अल्लाह ताला रखता कि ये बताएंगे। और यहां से ये हमें पता चला कि दुनिया की मईशत, मईशत का मतलब क्या होता है, साजो सामान, गुजर बसर के जो जराए होते हैं, जिनसे जो प्रोविजन जिसको कहते हैं, गुजर बसर जिससे होती है इंसान की, तो ये सब अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा, ये अल्लाह की तकसीम है। और जब हम इस तकसीम पे राजी नहीं होते, उसको प्रमोशन क्यों मिल गई, उसकी दुकान इतनी क्यों चलती है, उसके पास इतने ग्राहक क्यों आते हैं, मेरी जॉब छोटी क्यों और उनकी बड़ी क्यों, और इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, और इससे हसद करते रहना, और इनके पास तो बहुत कुछ है, देखो इनके पास ये भी, जलते भुनते कुड़ते रहना। और जब भी किसी के पास कुछ ज्यादा माल आ जाए तो उसके ऊपर भी परेशान रहना और चैन ना आना, तो ये किस चीज से आप राजी नहीं हो रहे? ये नहीं कि उस बंदे से राजी नहीं हो रहे, असल में हम फिर अल्लाह की तकसीम से राजी नहीं हो रहे। क्या ये अच्छी बात है कि हमें अल्लाह की तकसीम के ऊपर एतराज हो? क्या ये अच्छी बात है कि हम अल्लाह की तकसीम पे राजी ना हो? जिसको जो मिला हुआ है, जो गुजर बसर का यहाँ पे सामान मिला हुआ है, किसने दिया उनको? अल्लाह ताला ने ना। क्या हम सोचते हैं कि कोई खुद भी अपनी तदबीर से, अपनी तालीम से, अपनी या और कोई वसाइल थे उसके पास, उनसे हासिल कर सकता है? नहीं, कुल्ली तौर पे अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हदीस में आता है यकीनन अल्लाह ताला रिस्क तकसीम करता है और अखलाक भी तकसीम करता है, ठीक है? ये अभी मैं आप आगे इस हदीस को और बताती हूँ, लेकिन पहले ये बात सुन कि रिस्क तकसीम अल्लाह करता है। और जिस वक्त हम इस चीज के ऊपर बेचैन होते हैं और हमें अंदर बस एक बेकली सी लगी होती है, क्यों इनको मिल गया, क्यों इनको, किसके पास क्यों है ये, उसके उसके पास ये क्यों आ गया, वो क्यों, बड़ी गाड़ी क्यों है, बड़ा घर क्यों है, उसकी तो सारी चीजें अच्छी क्यों है, तो हम दरअसल अल्लाह ताला की तकसीम पे नाराज हो रहे होते हैं। ये नाराजगी अल्लाह ताला के ऊपर एतराज है, ये नाराजगी अल्लाह की तकसीम के ऊपर राजी ना होना है, और ये भी गुनाह है। और लिहाजा जब किसी के पास कुछ भी हो तो उसके ऊपर यही सोचे, अल्लाह ने इसको दिया है, अगर आपका दिल चाहता है कि मुझे भी मिले, अल्लाह ताला तूने इसको अता किया तो मुझे भी अता फरमा। मगर दूसरों से हसद ना करे, दूसरों की चीजों को देख के और उसके बाद बेचैन ना रहे, परेशान ना रहे, और ये ना सोचे कि इसको तो मिलना ही नहीं चाहिए था, इनको क्यों मिला हुआ, फलां को मिलना चाहिए था। अब ऐसे ऐसे बड़े कई नाफरमान है अल्लाह के, हम सोचते हैं इनको क्यों मिला, इनको तो इसको तो मिलना ही नहीं चाहिए। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि इसको मिलना चाहिए या नहीं, अल्लाह ने दिया हुआ है, उसकी हिकमतें, उसको पता होगा क्यों दिया है। और वो जो एक बेचारा गरीब है, वो इतना शरीफ आदमी है, असल तो उसके पास होना चाहिए था। नहीं, मुझे मैं नहीं जानती उसका किस में इम्तिहान है और इसका किस में इम्तिहान है। तो ऐसे इतराजात भी नहीं करने। तो इस हदीस को अब आगे लेके चलते हैं कि अल्लाह ताला तकसीम करता है तुम्हारे दरमियान रिज्क भी और अखलाक भी। और आगे देखें, बहुत प्यारी बात है, बेशक अल्लाह ताला दुनिया तो उसको भी देता है जिससे वो राजी होता है और जिससे नहीं राजी होता, या जिससे वो मोहब्बत करता है और जिससे नहीं मोहब्बत करता, मगर दीन सिर्फ उसको देता है जिससे मोहब्बत करता है। इसीलिए जब भी मेरे सामने कोई रिवर्टेड लोग आते हैं तो मैं बस एक बात दिल के अंदर होती है, ला तू उनसे कितनी मोहब्बत करता होगा कि तूने इनको कुफर और शिर्क में से निकाल के तौहीद के जैसी नेमत अता फरमा दी, क्योंकि तू इनसे मोहब्बत करता ही होगा तो इनको ये दिया। तो रिस्क अल्लाह सब कोई दे देता है, जिससे मोहब्बत करता है जिसे नहीं भी करता। देख लेना आप, कई नेक लोग हैं बहुत मालदार भी हैं, कई काफिर हैं, फासिक फाजिर हैं वो भी बहुत मालदार हैं। तो ये जो रिस्क है दुनिया का, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इस बात का कि अल्लाह इनसे बड़ी मोहब्बत करता है। कई पैगंबर देखे आप, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम बातियातों के मालिक थे। कई पैगंबर हैं कि आप जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाकों पे जिंदगी गुजारी। ये कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम किसी को नापें कि पता नहीं अल्लाह को इससे मोहब्बत है और इसको देखो इतना दिया हुआ है। हम यही सोचने लगते ना, पता नहीं ये इसके तरीके अच्छे ही होंगे, पता नहीं यही अच्छा है तभी अल्लाह इसको दे रहा है इतना। नहीं, हाँ, मगर जब आप दीन में किसी को देखें ना तो फिर समझ जाए कि अल्लाह को जरूर मोहब्बत ही है। मगर देखा पैगंबरों के पास दीन था, फिर वो स्टैंप है इस बात की कि अल्लाह को जरूर मोहब्बत है। तो हम इस हदीस से हमें पता चलता है कि जो दीन की खिदमत भी है और जो अल्लाह की पसंद के काम भी हैं, उसकी मर्जी के काम भी हैं, जो नेकियां भी हैं, वो भी अल्लाह ताला उन तौफीक देता है उन्हीं को जिनसे वो मोहब्बत करता है। अब देखे ना, हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ दे देता है। तो भलाई का इरादा ही है आपके साथ अल्लाह ताला का, मोहब्बत ही है अल्लाह ताला की जो आपको इस तरफ लेकर आए, वो आपको दीन देता है, ईमान देता है, ये सब नेमतों से बड़ी नेमत है। फिर फरमाया वरफाना बादहुम फौक बादिन दराजातिन, और अल्लाह ताला ने बाज को बाज पे दर्जे दिए। दर्जे दिए मतलब क्या, किसी को कोई चीज ज्यादा दी, किसी को कोई चीज कम दी, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को अंधा बनाया, किसी को देखने वाला बनाया, किसी को बहुत जीनियस बना दिया, किसी कोई बेचारा बिल्कुल ही कुंद ज़हन है, किसी का दिमाग चलता है, किसी का चलता ही नहीं है, किसी को हुकूमत दी, किसी को नहीं दी, किसी को किसी बड़े खानदान के अंदर पैदा फरमा दिया, किसी को किसी और खानदान में पैदा फरमा दिया। तो बंदों के मुख्तलिफ दर्जात हैं, वो हर चीज के अंदर, चाहे वो दौलत है, मालो दौलत है, चाहे वो जिस्मानी कुव्वत है, जहनी कुव्वत है, चाहे वो इल्म है, कोई बड़ा साइंसदान है, कोई बिल्कुल ही उसको कुछ आता जाता नहीं, बिल्कुल जाहिल है। तो सलाहियतों में भी सबको डिफरेंट रखा, कद काठ में, शक्लों में, जैसे सब डिफरेंट है, इस तरह बाकी चीजों में भी एक जैसे सब नहीं है।
तो क्यों लियत्तखिदा बादुहुम बादन सुखरिया, ताकि बाज को बाज का खिदमत गुजार बना दे, बाज को बाज का खिदमत गुजार, यानी एक दूसरे से काम लेना, एक दूसरे से खिदमत लेना, तभी पॉसिबल था ना जब ये फर्क होता। अगर सारी दुनिया को बादशाह बना देता, अगर मैं भी रानी तू भी रानी, तो कौन भरेगा पानी, मेरा काम कौन करता। तो ये भी एक हिकमत थी अल्लाह ताला की कि ये फर्क अल्लाह ताला ने रखा। तो अगर बंदों के पास इख्तियार दे दिया जाता, तो आप सिर्फ इतना देख लें, ये विरासत है ना, जब हम अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक नहीं विरासत को तकसीम करते तो होता क्या है? उसके बाद कोर्ट कचहरियां, एक दूसरे से बातचीत बंद, कतए ताल्लुक, कतए रहमी, और सब दूसरे से जेलस और दुश्मनियां, क्या कुछ होता है। क्योंकि अब हमने तकसीम को अपने हाथ में ले लिया, मैं बताऊंगी कि किसको कितना मिलना चाहिए, और तब यकीनन नाइंसाफियां होती हैं। तो याद रखिए, अल्लाह ताला की तकसीम जो है उसके ऊपर राजी रहना सीखना है, और ये भी पता चलना चाहिए कि समझ आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये फर्क रखे हैं, लेकिन इन फर्क को रखने के अंदर ये नहीं कि वो किसी से राजी है और किसी से नहीं राजी है, तो उसको एक को अंधा बना दिया तो उससे नहीं राजी है, जिसको आंखें दी हुई हैं वो उससे अल्लाह बड़ा खुश है, जिसके पास पैसे हैं वो उससे अल्लाह बड़ा खुश है, जो गरीब है पता नहीं इससे खुशी नहीं है। नहीं, ये नहीं है। एक ही माँ बाप की औलाद होती है, आप देखें किस्मतें कैसी कैसी होती हैं। एक बच्चा है वो, यानी हम अपने सामने देखते हैं, ये आप लोगों ने भी यकीनन देखा होगा, एक घराने को हम एक बहन भाई को देखते हैं, दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होता है, उसमें भी मोहताज होते हैं। दूसरे के पास इतना है कि उसके कुत्ते भी गोश्त खाते हैं। तो ये बस अल्लाह की तकसीम है। एक है दो लोग एक साथ दुकान खोलते हैं, एक है उसके ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, उसके पास फुर्सत नहीं है, दूसरा वो सारा दिन मक्खियां मारता रहता, कोई आता ही नहीं। ये किसकी तकसीम है? ये नहीं कि उसके पास कोई बहुत आइडिया, कोई बड़ा ऐसा था, हम तो ये सोचते ना ये तो बहुत जीनियस, ये तो बहुत बड़ा, इसको समझ है, सारी समझे पीछे रह जाती हैं जब अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाहता ही है, कोई अल्लाह की कोई मशीयत होती है, अल्लाह ताला ने उसको देना है तो उसको वो अकल भी आ गई, वो समझ भी आ गई, उसने ये कदम भी उठा लिया। तो ना कोई मालदार अकड़े और ना कोई गरीब जो है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, ना कोई मालदार अपने आप को बहुत अकलमंद समझे, और ना कोई बेचारा गरीब जो रह गया वो कहे कि हाय पता नहीं मेरे अंदर ही कोई अकल में कमी है, या पता नहीं मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए एक ही क्लास में होते हैं दो लोग, एक ही डिग्री उन दोनों के पास होती है, क्या एक जितना उनको मिलता है? एक बाहर निकलता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है, और दूसरा एक ही लेवल पे रहता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो अकलमंद बहुत ज्यादा था, वो पहले शुरू से ही ऐसे था, वो किसने अकल दी थी? अल्लाह ताला ने उसको वहां पहुंचाना था, इसलिए उसको वो अकल भी दे दी, वो कदम भी उसे उठवा दिया। तो इस जहन में रखें कि ये अल्लाह की तकसीम, बस हमने इस पे राजी रहना, और ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए किसी को भी, कि ये पैमाना किसी को भी जज करने का। और फिर फरमाया वह रहमत तो रब्बी का खैरो मिम्मा यजमाऊ, लेकिन ये याद रखो अल्लाह ताला की रहमत ना बेहतर है इस सब से जो ये जमा करते हैं। तो अल्लाह की रहमत से मुराद क्या है यहाँ पे? एक तो ये बात जो पहले आई है कि जो नबुवत अल्लाह ताला ने दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपका आना बतौर रहमत के है, ये हर चीज से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत रिसालत ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मबूस फरमाए गए, इतनी बड़ी रहमत है, इतना बड़ा अल्लाह ताला का फजल है, हर उस चीज से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। तो और दूसरी बात ये कि अल्लाह की रहमत एक जेनेरिक उसके अंदर भी लिया जाए, तो अल्लाह की जो रहमत है
वो बेहतर है उसे जो जमा करते हैं, यानी जो अल्लाह ताला अता करता है वो इंसान की कोई भी कोशिश वो कर रहा है जमा करना कोई भी, उससे ज्यादा अल्लाह की रहमत बेहतर है। इंसान लिमिटेड कर सकता है ना, उसकी कोशिश लिमिटेड होती है, लेकिन अल्लाह ताला जो अपनी रहमत से अता फरमाता है वो बहुत ज्यादा होता है उसके मुकाबले में।
और फरमाया वलौला यकून अन्नास उम्मत वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकफ़ मिन फिद्दतिन व मआरिज अलैहा। ये अब अच्छा अभी बताया गया नित के, ये जो लोग जमा करते हैं चीजें या लोगों के पास जो कुछ माल है या वो जो ये चीजें हैं ना, ये बहुत हकीर हैं अल्लाह ताला के यहाँ। अल्लाह की जो रहमत है वो ज्यादा अजीम है। उसमें ये भी आ जाता है कि जो आखिरत में मिलने वाली चीजें हैं उनकी अजमत भी बताई गई कि ये जो दुनिया में लोग जमा कर रहे हैं इसे बहुत बेहतर है अल्लाह की रहमत जो यानी आखिरत में जन्नत की सूरत में होगी, और वहां की जो नेमतें होंगी वो बहुत ज्यादा बेहतर है इसे जो यहाँ पे जमा करते हैं लोग। अब वो पता है ना कुरान के बारे में भी फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में कि वो बहुत बेहतर है उसे जो लोग जमा करते हैं। और लोग क्या कुछ जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं और कोई कोई चीजें दुनिया की हकीर चीजें जमा करते रहते हैं, कोई कपड़े जमा कर रहा है, कोई जेवर जमा कर रहा है, कोई कोई चीज किसी चीज में लगा हुआ, किसी को किसी चीज का शौक है, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर है इस सबसे। और ये भी कि ये कुरान बहुत बेहतर है इस सबसे, जैसे सूरह यूनुस में आया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना इन सब चीजों के मुकाबले में बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की। और अगर लोग ये ना होता कि लोग एक उम्मत बन जाएंगे, एक उम्मत बन जाएंगे का मतलब क्या, यानी यहाँ पे एक उम्मत बनने का मतलब है सारे ही काफिर हो जाएंगे, सारे कुफर इख्तियार कर लेंगे, तो अल्लाह ताला क्या करता अगर ये डर ना होता, तो अल्लाह ताला क्या करता, ला जालना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, तो हम कर देते उसके लिए जो रहमान के साथ कुफर करता है, क्या कर देते उनके लिए, ली बुयूतिहिम सुकुफुन, उनके घरों की छतों को, मिन फिद्दतिन चांदी की, और उनकी सीढ़ियां उस पर भी क्या होता जिस पर वो चढ़ते हैं, वली बुयूतिहिम अबवाबन, और उनके घरों के दरवाजों को, वसुरूरन और तख्त, अलैहा यत्तकीऊन जिसपे वो तकिया लगाते हैं, और जुखरुफन और सोने के, चांदी के और सोने के, क्या क्या चीजें अल्लाह ताला बना देता उनके घरों की छतों को बना देता चांदी की, उनकी सीढ़ियां, देखे जो बड़े बड़े मोहल्लात होते हैं वो कितने मतलब उसके अंदर, जब आप जैसे देखते हैं ना बाज दफा वो दिखाते हैं जो बहुत अमीर लोग होते हैं जी, उनके जहाज हैं और उसके अंदर जो नलके हैं वो भी सोने के हैं, और उनके महल हैं उनके अंदर भी सोने चांदी की चीजें हैं, अक्सर दिखाते रहते हैं कि उनके इवन बाथरूम की चीजें भी सोने चांदी की हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नजदीक ये कुछ भी नहीं है, ये जिस चीजों को तुम बड़ा समझते हो और इनके ऊपर तुम रीझते हो और इनको ही जमा करने में लगे हुए हो और इसकी बेस के ऊपर लोगों को जज करते हो और उनको समझते हो कि इसके पास बहुत है, ये अल्लाह के नजदीक इतना हकीर है, इतना हकीर है कि अगर ये डर ना ना होता कि सारे लोग ही काफिर बन जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ इन काफरों को दे देना था, उनके घरों की छतें भी अल्लाह ने सोने की बना देनी थी, इतना इनको देना था कि इनके दरवाजे भी सोने चांदी के होते और इनके जो तख्त भी सोने चांदी के होते और इनकी सीढ़ियां भी सोने चांदी की होती, ये बताना कैसे। अच्छा मैं आपको एक मिसाल से बताती हूँ फिर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आएगी। अच्छा आपके घर में गार्बेज है, ट्रैश है, ठीक है, कूड़ा करकट है। अब वो कूड़ा करकट अगर कोई आपसे मांगने के लिए आ जाए तो आप क्या कहते हैं, आपके लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ कोई आपके लिए कोई कुर्सी मांगे, सोफा मांगे, शायद आप कहें कि नहीं मैं क्यों दूं, या कोई आपके कपड़े मांगे तो आपके लिए उनकी कोई वैल्यू है तो आप कहें कि मैं क्यों दूं, शायद आप कह दें। लेकिन अगर आपसे कोई कूड़ा मांगता है आपके घर का, तो आप कहेंगे अरे मैंने नहीं देना ये कूड़ा, आप कहेंगे सारा ही ले जाओ मुझे कोई परवाह नहीं, गार्बेज है तो सब ट्रैश है, ये क्या चीज है, मेरे नजदीक कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप उसको आराम से दूसरे को दे देती हैं।
अल्लाह ताला के नज़दीक ये दुनिया की सारी चीज़ें ट्रैश हैं। ना इससे आप अंदाज़ा करें कि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर का पर आप देखें, मच्छर की क्या की कद्रो कीमत है, कुछ है कुछ भी नहीं, ऐसे हाथ से आप उसको मार देते, कुछ भी नहीं है। वो ऑन टॉप ऑफ मच्छर नहीं कहा गया, मच्छर के भी पर, मच्छर के पर कितना हकीर होगा, अगर मच्छर है ऐसे इतनी हकीर सी चीज तो उसका पर कितना छोटी चीज है। अगर अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती इस दुनिया की कीमत, यानी इतनी भी नहीं है, इस समझ समझे आप इस बात को, इतनी भी नहीं है, अगर इतनी भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता। इट मीन्स कि इतनी भी नहीं है, इसीलिए तो काफिर आज पैसे में खेल रहे हैं, दौलत में खेल रहे हैं, इसमें खेल रहे हैं, इतनी सी भी नहीं है अल्लाह के नजदीक इसकी कदरों कीमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, मुर्दा बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था, आपने फरमाया इसको कौन खरीदेगा, लोगों ने कहा ये तो कन कटा था, लोगों ने कहा ये तो जिंदा भी होता कोई ना इसको खरीदा, इसके अंदर तो ऐब है, वो अब तो ऐब वाला भी है और मुर्दा भी है। आपने फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया की कदरों कीमत इतनी भी नहीं है। और ये मच्छर वाली बात से आप ज्यादा समझ सकते हैं कि इतनी भी नहीं है, वरना अल्लाह ताला अगर इतनी सी भी होती ना, इतनी सी भी, तो अल्लाह ताला एक काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता। लेकिन आप देख रहे हैं ना काफिरों को, पानी क्या, उनके पास तो बहुत कुछ है। तो इसका मतलब अल्लाह ताला के नजदीक कोई कदरों कीमत नहीं है, जरा सी भी इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं। और ये यहां पे बताया गया, अगर ये डर ना होता कि लोग सारे काफिर ही हो जाएंगे, क्योंकि जब लोग देखेंगे अरे इनके घर सोने के, इनके अभी इतने मुतासिर रहते हैं, अभी तो सारे काफिरों के पास ऐसी भी चीज नहीं है, लेकिन अगर ये डर ना होता कि ये सारे ही काफिर हो जाएंगे, इन्होंने क्या ना, ये तो भाई पता नहीं कुफर ही अच्छी चीज है, क्योंकि देख लो ना ये काफिर हैं और इनके पास कितने सोने चांदी और इनके महलात देखो, और इनके पास हम भी सारे काफिर हो जाते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अगर ये डर ना होता तो अल्लाह ताला काफरों को इतना कुछ दे देता, उनके ऊपर दरवाजे खोल देता, सोने चांदी के होते हैं इनके बाथरूम और उनके नलके और टॉयलेट्स भी, इनकी सीढ़ियां और इनके दरवाजे और इनके सब चीजें सोने चांदी की होती हैं। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि उसने इनके ऊपर दुनिया की दुनिया नहीं खोल दी सारी की सारी। क्यों? इसलिए कि अगर ऐसा कर देता तो एक मुसलमान तो बड़ा इम्तिहान में पड़ जाता, उसने कहना था बस भाई ये ईमान में क्या मिलता है, इसको तो छोड़ो, दुनिया तो वहां पे मिल रही है, उधर को भागो। हालांकि अल्लाह ताला ने ये नहीं किया, तब भी आज ये हाल है, अभी अल्लाह ताला ने इनको इतना नहीं दिया काफरों को, तब भी ये आज हाल है कि एक मुसलमान जो है रीझा जाता है कि हाई देखो इनकी तरक्कियां कितनी, वेस्ट ने बहुत तरक्की कर ली, पता नहीं कुफर की वजह से की होगी, नंगे होने की वजह से की होगी, और इसे डेटिंग कल्चर जो है इसकी वजह से की होगी, क्योंकि ये शादियां ही नहीं करते, ये बच्चे ही नहीं पैदा करते, क्योंकि ये नंगे फिरते हैं, क्योंकि ये शिर्क करते हैं, क्योंकि ये बस कोई अल्लाह की हदों को नहीं है, क्या हमारे दीन ने हमें क्या दिया, इस्लाम ने हमें क्या दिया, ये मौलवी तो ऐसे ही बस, देखो इनकी वजह से हम पीछे रहे हैं, देखो वेस्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, देखो उन लोगों के तरीके क्या, उनके सारा गंद लेके खुद अपना अपना लिया, और सारा इल्जाम के कि हम ये इसकी वजह से पीछे रहे हैं, ये बस ऐसा हम अल्लाह तौबा बस ये करते रहो, इनका तो यही काम है, देखो ना इस वजह से हमने तरक्कियां नहीं की, तरक्की करनी है तो उनके जैसे बनो, और उनके जैसे बनने में कोई और तरीका नहीं उनका अपनाया, बस नंग धड़ंग को अपनाओ, बेहयाइयों को अपनाओ, और ऐसी चीजों को अपनाओ कि जैसे मादर पिदर आजाद हैं, जिसमें ना कोई शादी करे ना कोई कुछ, लिविंग टुगेदर अपनाओ, मर्द और औरत कोई एक आपस के अंदर ताल्लुक नहीं है, लेकिन बेहयाई के काम सरेआम कर रहे हैं वो, उन चीजों को अपनाओ, उनके जैसा हर चीज हमारी होनी चाहिए, कल्चर उनका होना चाहिए, उनका हर मामले में उनके पीछे चलोगे तो तब हम भी तरक्की करेंगे। अभी हालांकि अल्लाह ने सब कुछ इनको नहीं दिया, अभी अल्लाह ताला ने किसी ईमान वालों को ऐसा नहीं कर दिया कि वो बिल्कुल नीचे दुनियावी नेमतों में हो जाए, और ये इनको इनके सोने की चांदी की हर चीज हो, अभी ये नहीं है, तब भी ये हाल है। और अगर कहीं सारे काफरों को ये सब कुछ मिल जाता तो ईमान वालों ने तो अपना ईमान तो इधर फेंकना था, उन्होंने कहना था चलो उनकी तरफ, हम भी वहां जाएंगे तो हमें भी ये मिलेगा। तो ये तो अल्लाह की रहमत है, वरना बड़ा इम्तिहान हो जाता। जबकि हम अभी भी सुधर नहीं रहे, अभी भी हम उनके ऊपर कैसे हमारे दिल उनकी तरफ लपकते हैं और ऐसे उनके चीजें पसंद आती हैं, जैसे कि यही चीजें तरक्की की सीढ़ी हैं, यही चीजें हैं जिनसे तरक्कियां मिलती हैं, इसी कुफर और शिर्क और बिल्कुल आजादी जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसी से शायद तरक्कियां होती हैं। तो हम भागे जा रहे हैं उनकी तरफ, जबकि वो खुद भी रिसर्च करके कहते हैं कि इन चीजों की वजह से हमारे माशरों में जवाल आया, इनकी वजह से आज ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने बाप का ही पता नहीं है, हमारे इन तरीकों की वजह से औरत को घर से बाहर निकालने की वजह से नस्लें तबाह हो गई हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, ये अच्छे तरीके हैं क्योंकि इसी से तरक्कियां होती हैं। तो हम रोंग हैं, अल्लाह ताला देखें बता रहे हैं कि अगर ये सारे लोग एक उम्मत ना हो जाते, सारे लोग काफिर ना हो जाते, इस चीज का डर ना होता, तो अल्लाह ताला इनको सब कुछ ही दे देता। और सो इमेजिन करें जरा, अभी हम दुनिया के अमीर तरीन लोगों से बहुत मुतासिर रहते हैं, हाँ देखो वो बिल गेट्स के पास क्या है, और देखो उसने शादी कैसी की फलाने है, और इनके पास अच्छा ये तो ऐसे हैं, ये तो कुफर पे हैं, ये तो शिर्क पे हैं, फिर भी इनके पास इतना है, पता नहीं यही तरीका सही होगा। तो नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला ने सब कुछ नहीं इनको दे दिया। अल्लाहु अकबर, वा इन कुल्लु ज़ालिक लम्मा मताउल हयात दुनिया, और बेशक ये सब तो दुनिया की जिंदगी का सामान है। वल आखरत तो अंदर रब्बी का लिल मुत्तकीन, और आखरत तेरे रब के यहाँ मुत्तकीन के लिए है। वल आखरत तो खैर व अबका, आखरत तो बेहतर भी और बाकी रहने वाली भी है। लेकिन कौन समझाए ये हमें, ये कौन समझाए? हमने तो दुनिया की आराइश जेबाइश, इसके सामान, इसकी सारी जो जीनतें हैं, इनको सब कुछ समझ लिया और इसी के पीछे भाग रहे हैं अंधाधुंध। हम इसको हकीर तो नहीं समझते? हम वहां की तरफ भागते हैं, उन लोगों की तरफ भी भागते हैं जिनके पास दुनिया की बहुत सारा सामान होता है, वो ही हमें अच्छे लगते हैं, उन्हीं के साथ ताल्लुकात बनाने में हम फख्र महसूस करते हैं। हालांकि जैसे मैंने अभी आपको वो हदीस बताई कि दुनिया तो अल्लाह काफिर को भी देता है और मोमिन को भी देता है, मगर दीन सिर्फ मोमिन को देता है, इससे मोहब्बत करता है, आखरत सिर्फ मोमिन के लिए। अब ये समझ लें कि दुनिया अल्लाह काफिर को भी दे रहा है, मोमिन को भी देता है, और आखरत सिर्फ मोमिन के लिए। अब मता क्या आरजी फायदा है, तो दुनिया आरजी फायदा है, इसकी हर चीज आरजी है, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। और एक बड़ी खूबसूरत हदीस बड़ी पसंद है मुझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की मिसाल बताए कैसी है, सुभान अल्लाह, फरमाया दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे इब्ने आदम का खाना, जैसे हमारे खाने होते हैं ना वैसे, कैसे? देखिए सुभान अल्लाह कितनी प्यारी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, फरमाया खाने को जितना मर्जी लज्जतदार बना लो, जायकादार बना लो, लेकिन उसका अंजाम क्या है ये देखो कि उसका अंजाम क्या है, कितना ही आपने उसको डेकोरेट किया, वह बड़े बड़े खूबसूरत खाने होते हैं, बड़े सजे हुए, बड़ी तरीके के, बड़े जायकादार भी, लेकिन सबका अंजाम एक ही है, ये दुनिया वो है। कोई अमीर है, गरीब है, कोई अंधा है या देखने वाला है, कोई जहीन है या कुंजहन है, अंजाम तो सबका एक ही, खत्म हो जाना, मिट जाना। और आखरत बेहतर भी है, इससे बेहतर है, बेहतर है कि एक आखरत में एक हूर जो है उसका दुपट्टा भी दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे ज्यादा कद्रो कीमत वाला है, एक दुपट्टा पूरी दुनिया से ज्यादा, और जो कुछ उसमें सारी दुनिया को कीमत बना के दे दे, तब भी उस एक दुपट्टे की आप कीमत नहीं अदा कर सकते, इतना कीमती है वो। लेकिन हम रीझे रहे इसी दुनिया के पीछे, और इसी को सब समझ लिया, इसकी मुद्दत कलील है, मुद्दत भी कलील है, इसकी उम्र बहुत थोड़ी है। देखिए कितना जीना है यहाँ पे, कितना जी लेंगे, कितनी देर यहाँ पे रह लेंगे। जैसे फुज़ैल फरमाते हैं कि अगर दुनिया सोने की होती मगर इसको फना हो जाना है, और आखरत ठीकरियों की होती तब भी हमें चाहिए था कि हम फना हो जाने वाले सोने के ऊपर हमेशा रहने वाली आखरत को तरजीह देते हैं। इन्ना दारुल आखिरत हियल हैवान, आखरत जो है उस वो उसका घर बाकी रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, दुनिया नहीं। दुनिया का तो कोई कंपैरिजन ही आखरत के साथ नहीं कर सकते ना। आप देख लें कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि समंदर में अगर आदमी एक अपनी उंगली डबोता है और उसको बाहर निकालता है, तो जो पानी उंगली पे लगा रह जाता है वो दुनिया है, और आखरत उसके मुकाबले में वो समंदर है। तो कितनी बड़ी है आखरत और दुनिया कितनी छोटी है, ये पानी कितना सा है, इमेजिन करिए आपको बताने के लिए। अव्वल तो समंदर की भी एक हद होती है, आखरत की तो हद नहीं है, उसकी जिंदगी की कोई हद ही नहीं है कि कभी खत्म ही नहीं होनी। समंदर तो फिर भी कहीं खत्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ हमें समझाने के लिए कि हम समझ जाएं कितनी थोड़ी है ये दुनिया की मुद्दत। और हम खुद कहते हैं, हम अपनी, किसी और ने तो हमें क्या बताना है, हम खुद अपनी जुबानों से कहते हैं, हे पता ही नहीं चला इतने साल गुजर गए, मैं 40 साल की हो गई, या मैं 50 या 60 इस 70 साल के बंदे को भी पूछें, कहते हैं जिंदगी का पता ही नहीं चला किधर चली गई, तुझे जिंदगी ढूंढ के लाऊं कहां से। कहा वो इंसान उस वक्त सोचता है कि हाय कहां चली गई मेरे माहो साल, कहां चले गए। तो एक तो ये जिंदगी इतनी छोटी है, इतनी कलील है, इसका पता भी नहीं चलता। 100 साल का बंदा भी पीछे मुड़ के देखता है तो उसको लगता है कल की बात है, और कयामत के दिन भी जाके इंसान कहेगा कि मैं तो एक दिन ठहरा था, दिन का कुछ हिस्सा। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर ये जमीन सारी की सारी आसमान तक दानों से भर दी जाए, दानों से, ठीक है, जमीन से लेके आसमान जितना खला है दानों से पुर कर दिया जाए, और एक परिंदा हो जो एक दाना खाए फिर 1,000 साल के बाद दूसरा दाना खाए, फिर 1,000 साल के बाद तीसरा दाना खाए, इसी तरह 1,000 1,000 साल के बाद वो दाने खाए, तो कितनी प्यारी उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा ये दाने खत्म हो जाएंगे लेकिन आखरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। यानी 1,000 1,000 साल के बाद एक दाना खा रहा है, और कितने दाने हैं जमीन से आसमान तक, तो ये दाने खत्म हो जाएंगे, आखरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। इसके लिए मेरी और आपकी तैयारी नहीं, वैसी नहीं जैसी करनी चाहिए, जिस जिंदगी ने खत्म ही नहीं होना उसके लिए क्या तैयारी है, और जो जिंदगी 4 दिन की है उसके लिए कितनी भागदौड़, कितनी मेहनतें हमारी लग रही हैं, हमारी कितनी सलाहियतें लग रही हैं, हमारी सोच और फिक्रें कितनी लग रही हैं उसके पीछे, हमारी प्लानिंग कितनी लग रही है उसके पीछे, हमारे शबो रोज की जो सोच है ना वही उसके पीछे ही भाग रही है। और फिर इसकी हर चीज जो है वो पुरानी हो रही है, और चाहे आप वो कपड़ा ले लें, चाहे आप वो घर ले लें, चाहे आप वो कोई गाड़ी ले लें, चाहे वो कोई भी चीज है जो भी आपके पास, पुरानी हो रही है, डी वैल्यू हो रही है उसकी। वो आप एक घर भी रखे तो 10 साल बाद उसका क्या हाल होता है, एक दिन तो बड़ा चकाचौंध नया नजर आता है, एक कपड़ा पहनते हैं जब खरीदते हैं उस वक्त कितना शौक होता है, उसके बाद 4 दिन के बाद उसी को फेंक रहे होते हैं, वो पुराना हो गया। इस दुनिया की हर चीज पुरानी हो रही है, यानी अपनी जवाल की तरफ को जाती है, जबकि आखरत की कोई चीज ऐसी नहीं होगी, हमेशा रहने वाली होगी, और पुरानी नहीं होना उसने। और उसकी वैल्यू वैल्यू क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में कि एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा क्या होता है वो जिसे घोड़े को मारते हैं, इतना छोटा सा ही है ना, एक कोड़ा रखने की जगह भी जमीनों आसमान से बेहतर है, इतनी जबरदस्त है वो, जमीन पूरी और आसमान पूरा, इतनी सी जन्नत में जगह इस सबसे ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर, तो आप बताएं कोई कंपैरिजन है? लेकिन इसके बावजूद हम सौदा किसका करते हैं? अच्छा, अगर आपके सामने एक सौदा रखा जाता है, आप वो कहें कि एक जगह पे जमीन है, बड़ी अच्छी जमीन है, लेकिन अगले साल ना उसके ऊपर पानी आ जाएगा, वो जमीन खत्म हो जाएगी, हुकूमत ले लेगी वो। आपके पास वो भी है बहुत अच्छी लोकेशन, बड़ी अच्छी है ये है, लेकिन वो हुकूमत ने ले लेनी है और उसके ऊपर पानी आ जाना है और वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ एक और जमीन है, वो है आपके पास ही रहेगी, आपके अगली नस्लों तक जाएगी, आप किसका सौदा करेंगे? वो जो खत्म हो जाने वाली है या जो बाकी रहने वाली है? इंसान नेचुरली कहता है कि नहीं, ये वाला सौदा तो चाहे कितना ही अच्छी लग रही हो मुझे आज ये, लेकिन जब मेरे पास रहनी ही नहीं, क्या फायदा इसका, इसको मैं क्यों खरीदूं? जबकि वो जो हमेशा रहने वाली है, अगली मेरी नस्लों तक भी जाएगी और मेरी ही मिल्कियत होगी, मैं उसका सौदा क्यों ना करूं? आप इसी तरह देख लें, किराए का घर और एक आपका अपना घर, आप हालांकि अपना भी अपना कहाँ रहता है, वो भी चला जाता है इंसान के हाथ से, लेकिन फिर भी किराए के घर के लिए इंसान कुछ करता है तरद्दुद, मैं इसको बड़ा, इसके ऊपर बड़ा इन्वेस्ट करूं, इसके ऊपर ये कर दूं वो कर दूं, इसको पूरा यानी रेनोवेट करूं, इसके पास कहता मेरा है ही नहीं है तो क्या फायदा, जब अपना घर होगा ना तो उसके ऊपर हम पैसा लगाएंगे, इसके ऊपर क्या फायदा, ये तो मेरा ही नहीं, इससे तो मैंने कल को चले जाना, जिस दिन मालिक मकान कहेगा यहाँ से मूव होना पड़ेगा, जिस दिन वो कहेगा खाली करो उस दिन खाली करना पड़ेगा, वो कभी भी कह सकता है, तो मेरा फायदा क्या मैं यहाँ पे लगाऊँ? किसी को देखा है वो होटल के कमरे के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे? क्यों नहीं करते, वहां से तो चले जाना, कौन पागल होगा जो उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा? ये दुनिया का हाल ऐसा ही है, जब मालिक कहेगा वहां से निकलना है, मूव हो जाना, फिर भी हम इसमें इन्वेस्ट इतना करते हैं, इसी के अंदर हमारे दिल लगे हुए हैं, इसी के अंदर हमारी एनर्जीज लग रही हैं, जहन सारा इसके लिए लगा रहे हैं, इतना भाग भाग के पागल हो रहे हैं, हालांकि ये उस होटल के कमरे की तरह है या उस किराए के घर की तरह है, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया कि आपने इतने साल ही रहना है। कुछ तो किराए के घर ऐसे होते ना कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, आप साल भर के लिए उन्होंने आपको दे दिया, आप साल भर रहेंगे ही आप उस, ये वो किराए का घर है जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कल को मालिक मकान कह दे, आज शाम कह दे निकलना है तो निकलना है, ऐसा ही है ना, मैं और आप कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करके आए हुए कि हम इस दुनिया के अंदर 60 साल ही रहेंगे या हमने 100 साल ही जी के जाना है, आज शाम का फैसला आ जाए तो आज शाम को ही निकलना पड़ेगा, बताएं, खुद सोचें, ऐसे घर के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? लेकिन हमने क्यों सब कुछ इसके लिए इन्वेस्ट कर दिया? ये नहीं आपको कोई कह रहा है यहाँ पे जरूरत का सामान ना लो, लो जरूरत का सामान, लो रहने सहने के लिए जो आपको पास जरूरतें हैं, जो फायदे के सामान है लें, लेकिन इसको समझें कि ये चंद दिन का फायदा है, मैं इसके ऊपर सारी अपनी जिंदगी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। इसके बावजूद हाल ये है कि अगर हमें दीन की कोई बात करने के लिए या इसको सीखने के लिए आना पड़े या कोई अपनी नमाज के लिए वक्त निकालना पड़े या दीन की और खिदमत के लिए वक्त निकालना पड़े, इस रास्ते में अगर हमें जाना पड़े तो हमें लगता है कि ये तो फालतू काम है, और जॉब से तो मुझे पैसा मिल रहा है, इससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। देखो फिर हम किधर अपनी एनर्जीज खपा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में गुजरने वाली एक सुबह शाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है, सिर्फ एक सुबह या शाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है, यानी अल्लाह के रास्ते में अगर आप निकलते हैं दीन की किसी काम के लिए, किसी खिदमत के लिए, दावा वर्क के लिए, कुछ सीखने के लिए, अल्लाह के रास्ते में है ना आप, वो दुनिया और जो कुछ दुनिया में सबसे बेहतर है, लेकिन मेरी दौड़े हर जगह के लिए, जॉब के लिए भी हैं, शॉपिंग के लिए भी हैं, बिजनेस के लिए भी हैं, दावतों के लिए भी हैं, हर जगह के लिए भाग दौड़। लेकिन दीन के लिए कितनी है? अल्लाह अकबर। तो हाँ, आखरत में सिर्फ घर उसके लिए है, उसके रब के पास, जो मुत्तकी हैं, जो बच बच के चलते हैं, जो इसमें ही अपने आप को खपा नहीं देते कि यहीं जैसे के रहना है और हमेशा यहीं रहना है। और देखें, बच्चों के लिए भी छोड़ जाऊं, उनके बच्चों के लिए भी छोड़ जाऊं, इनके लिए भी बना जाऊं, उनके लिए भी बना जाऊं, और उनके अगलों के लिए भी बना जाऊं। अलग, अभी हमने ये पढ़ा है ना, दर्जों पे अल्लाह ताला ने बाज को बाज के ऊपर दर्जा दे दिया इस दुनिया के अंदर। आप देखें अपने सामने की बातें, यकीनन आपने भी देखा होगा, मैंने खुद भी देखा, बाप बहुत कुछ छोड़ के गया, बहुत कुछ। और हिस्ट्री में भी आप ये देख लो, ये खलीफा था, बहुत कुछ छोड़ के गया। तो रिवायत करने वाले कहते हैं कि हमने उन्हीं के बच्चों को देखा कि बाजारों में मांगते फिर रहे थे, और उमर बिन अब्दुल अजीज कुछ भी नहीं छोड़ के गए, और उनके बच्चे दौलत में खेल रहे थे। हमें तो बड़ी फिक्र है कि हमने अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई मकान भी इनके नाम लगा के चले जाएं, कुछ इनको कारोबार भी सेट करके जाएं, कुछ अकाउंट में भी इतने पैसे होने चाहिए, ये इस चीज की भी फिक्र होती है। खुद भी, हम अपनी भी, और साथ अपनी नस्लों की भी रिस्क की फिक्र हमने ही अपने जिम्मे ली भी। हालांकि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन फिर भी हमें बस परेशानी इस चीज की रहती है, उतनी आखरत की परेशानी नहीं है।
अल्लाह अकबर। हालांकि हदीस में आता है, जो अपनी दुनिया बनाता है वो अपनी आखरत का नुकसान जरूर करता है, और जो अपनी आखरत बनाता है वो अपनी दुनिया का नुकसान जरूर करता है। वाकई अगर दुनिया मनाएंगे ना, तो आखरत का कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, जाहिर है, क्योंकि एक इतनी जान है कि भाई कुछ एक ही काम पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं ना, या इतने आवर्स हैं, 24 आवर्स हर एक के पास है एक दिन में, उसके पास 25वां घंटा तो किसी के पास नहीं है। तो उसमें से अगर 15 घंटे दुनिया में ही लगा दिए और इसी के अंदर खप गए, तो और बाकी रह क्या गया? तो आखरत का तो नुकसान होगा, और जो आखरत के लिए लगाता है, दुनिया का नुकसान जरूर होगा। आखरत के लिए आप अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई दीन का ही काम कर रहे हैं, मसलन कोई दीन की खिदमत कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप जाके कोई जॉब कर सकते थे, आपने नहीं की, तो आपने कोई दुनिया का नुकसान किया ही ना। कहीं आप भी किसी शॉपिंग के लिए निकल सकते थे, सेल पे कुछ चीजें ला सकते थे, कहीं आप भी बैठ के इंटरनेट पे और कपड़े और ऐसी चीजें देख सकते थे, वो मैंने आपको फुर्सत ना मिली, तो आपने दुनिया का अपना नुकसान किया अपनी आखिरत बनाने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अब ये सौदा हमारे सामने है, हम किस चीज को चूज करते हैं और किस चीज को पीछे करते हैं। अगर हमें ये बात समझ आ जाती है, और इस पे यकीन है जो अल्लाह ताला यहाँ पे बयान फरमा रहा है, कि ये दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, थोड़ा सा फायदा है, फायदा है, बहुत थोड़ा सा है, बहुत टेम्परेरी है, इसको लेना चाहते हो या आखरत का हमेशा का फायदा? हम सब अक्लमंद है, हमारे सामने सौदे आते होंगे, हम रोज खरीद फरोख्त भी करते हैं, किस चीज को अपनाना चाहेंगे? तो कभी भी इसको वेस्ट ऑफ टाइम ना समझे, फालतू की चीज ना समझे, जो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं इसको भी बेकार ना समझे, ये बस हर चीज थोड़ी सी बात के लिए इसको छोड़ दो, वहां पे कुछ फायदा नजर आ रहा है, उधर को भागो, ये तो होता रहेगा, इसका क्या बात है, इसकी क्या परवाह है, और ये तो कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे, साल बाद भी कर लेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी कर लेंगे, यानी ये बिल्कुल फालतू का ही काम है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसके लिए कल परसों रखी भी है। हाँ, लेकिन आज पैसा कहीं से बन रहा हो तो उसको कभी नहीं कहते, तो कोई बात नहीं, कल बना लेंगे, कल ये सौदा खरीद लूंगी, कल ये बिजनेस कर लूंगी, कल यहाँ इन्वेस्टमेंट कर, नहीं, कल को क्या पता ये सौदा मिले ही ना, कल को क्या पता कीमतें ऊपर हो जाए, कल को क्या पता ऐसा हो जाए, नहीं, आज ही करो, ये बहुत अच्छी डील आई हुई है, उसके मामले में ये है, लेकिन ये डील अच्छी कभी लगती ही नहीं। अब ये हम कुरान पढ़ने वालों का हाल है,
और दूसरों को क्या हम कहेंगे। ये इसकी कोई कदर कीमत हमारे नजदीक वो नहीं है जैसे कि दुनिया के और कोई फायदे मिल रहे हो तो उसकी हो। इसीलिए तो छोटी छोटी बातों पे इसको छोड़ के भागते हैं। जमना ही मुश्किल हो जाता है। हर एक ही कहते बस इस्तकामत की दुआ करें, क्योंकि वो हमसे हमसे जमा जाता ही नहीं, इस्तकामत आती ही नहीं। अगर 2 दिन हम पढ़ेंगे भी तो 2 दिन छुट्टी, 4 दिन पढ़ेंगे तो अगले 1 दिन छुट्टी, क्योंकि ये काफी हो गया ना, ये तो काफी सामान हमने जमा कर लिया आखरत के लिए। असल तो दुनिया के लिए हमें ज्यादा करना चाहिए। इसको तो थोड़ा भी दे देंगे तो चल जाएगी आखरत हम, अगर दुनिया का कहीं नुकसान ना हो जाए ये नहीं चलेगी क्या। अब पता नहीं है कि रात तक कब्र में होते हैं कि जमीन के ऊपर होते हैं, हालांकि ये भी नहीं पता अभी, फिर भी देख ले हमारी प्लानिंग कितनी लंबी है। 100 100 साल की प्लानिंग की भी है, बच्चों और नस्लों तक की भी।